हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 9 श्लोक संख्या 26 से प्रारंभ करेंगे। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। न कामयेनाथ तदप्यहं क्वचित् न यत्र युष्मत् चरणाम्बुजासव महत्तमान्तर् हृदयान्मुखच्युतो विधत्स्वकर्णा युतमेष मे वर जिह्वानवक्ति भगवत गुण नाम धेय चेतशन स्मर्ति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यच्चिरये कदापि तानानयत्वमसतो अकृतवेषु कृत्या तस्मात् संकीर्तनं विष्णु जगलमंगन मोहसां महत्तामपि कौरव्य विद्धयैकान्तिकनिष्कृतं जय जय श्री राधारमण जय जय नवलखिशो जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ग्रंथा श्रीमद्भागवतम महापुराण की श्रीमद्भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 9 जिसका शीर्षक है सृजन शक्ति के लिए ब्रह्मा द्वारा उस्तुति। ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण की उस्तुति की जिसमें ब्रह्मा जी ने भगवान को प्रणाम किया, उनके समस्त ऐश्वर्यों उनके समस्त वैभवों के बखान करने के उपरांत ब्रह्मा जी भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि मैं आपका दास हूँ, मैं आपके सेवा करने के लिए आपने मुझे चुना है, तो कृपा करके आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है कि मैं इस विराट जगत का निर्माण कर सकूँ, आप मुझे योग्यता भी प्रदान कीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि जब मैं इस विराट जगत का सृजन करूँ तो मेरे अंदर कोई अहंकार ना आए, मैं आपके दास की तरह ही ये सारा कार्यभार करना चाहता हूँ। तो ये बहुत ही सुंदर शिक्षा ब्रह्मा जी ने हमें दी कि हम कुछ भी कर रहे हैं, हमारे अंदर अपनी कोई योग्यता नहीं, ये तो भगवान की कृपा है कि हमसे कोई सेवा ले रहे हैं। भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान स्वयं सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान ना ही सृजन करने के लिए और ना ही संहार करने के लिए, ये तो भगवान करुणा कर रहे हैं, भगवान अपने काम खुद ही कर सकते हैं, पर भगवान हमें अवसर देते हैं, उन्हें ना आपकी ज़रूरत है ना मेरी ज़रूरत है, वो स्वयं सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए अगर कोई सेवा भगवान हमसे ले रहे हैं तो भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी भगवान से आशीर्वाद लेते हुए आगे इस प्रार्थना को समाप्त करते हैं। उसके उत्तरांत आज श्लोक नंबर 26 में मैत्रेय मुनि कहते हैं, मैत्रेय उवाच
स्वसंभवं निशाम्यैव तपो विद्या समाधिभिः यावन्मनो वचस्तुत्वा विराराम सखिन्नवत् स्वसंभवं निशाम्यैव तपो विद्या समाधिभिः यावन्मनो वचस्तुत्वा विराराम सखिन्नवत् स्वसंभव। स्वसंभव मतलब अपने होने का स्रोत। ब्रह्मा जी को जब भगवान के दर्शन हुए और क्योंकि भगवान ही उनके होने के कारण थे, उनके प्राकट्य के स्तोत्र थे, तो निशाम्यैव जब उनको देखा तो तपो विद्या समाधि भी, तपो माना तपस्या, विद्या मतलब ज्ञान, समाधि भी तथा मन की एकाग्रता द्वारा, यावन मनो वच स्तुतिया, यावत माना यथा संभव, जितनी उनसे संभव थी, अत्यंत ही सुंदर शब्दों में ब्रह्मा जी ने अपनी शक्ति के अनुसार, ऐसा नहीं है कि भगवान की ये स्तुति कंप्लीट है, लेकिन जी भगवान की कोई संभव ही नहीं है कि भगवान की संपूर्ण स्तुति की जाए, भगवान की महिमा, भगवान का गुणगान कभी इन इन शब्दों से हो ही नहीं सकता। हमारे शब्दों में इतना सामर्थ्य है ही नहीं कि हम भगवान की महिमा का बखान कर सकें, लेकिन छोटे से छोटा जीव और बड़े से बड़े ब्रह्मा जी बस एक छोटी सी चेष्टा ही करते हैं, भगवान हमारी उस चेष्टा से ही संतुष्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान बोलेंगे कि मैं तो इतना महान हूं और तुम इतने कचरा शब्दों से मेरी स्तुति कर रहे। नहीं, हमको जितना भी हमारी शक्ति है उस सारी शक्ति को लगाकर 100% अपना देना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम 100% स्तुति कर पाएंगे। वो तो हमारी वाणी में उतनी क्षमता है ही नहीं, ना ही हमारी बुद्धि में इतनी क्षमता है कि भगवान का गुणगान कर सके। इसलिए मैत्रेय मुनि कहते हैं यावन मनो वच स्तुत्यम, यावन यानी यथा संभव, मन वच यानी अपने मन से अपने शब्दों से स्तुति की, और उसके बाद वीर राम सखिन्न, वीर राम फिर मौन हो गए, मनो खिन्नवत मना ऐसा लगता है जैसे उनके शब्द समाप्त गए हो, वो अब उनके पास शब्द समाप्त हैं, उन वो थक गए हैं। खिन्नवत मतलब उनको ऐसा लगा कि अब बस मैं और नहीं कर सकता, मुझे भगवान की स्तुति और समझ में नहीं आ रही कि क्या करूं, तो वो थक गए हैं इतनी स्तुति कर कर और वो मौन हो गए। अनुवाद देखिए, मैत्रेय मुनि ने कहा हे बुद्धुर, अपने प्राकट्य के स्त्रोत्र अर्थात भगवान को देखकर ब्रह्मा ने अपने मन तथा वाणी की क्षमता के अनुसार उनकी कृपा हेतु यथा संभव स्तुति की। इस प्रकार स्तुति करने के बाद वे मौन हो गए, मानो अपनी तपस्या ज्ञान तथा मानसिक एकाग्रता के कारण वे थक गए हों। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा, श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं ब्रह्मा में ज्ञान का प्रकाश इसलिए हुआ क्योंकि भगवान उनके हृदय में विराजमान थे। उत्पन्न होने के बाद ब्रह्मा जी अपने प्राकट्य के स्त्रोत्र को सुनिश्चित नहीं कर पाए, किंतु तपस्या तथा मानसिक एकाग्रता के बाद वे अपने जन्म के स्त्रोत्र को देख सके और इस तरह अपने हृदय के माध्यम से उन्हें प्रकाश प्राप्त हुआ। ब्रह्मा गुरु बाह्य गुरु तथा आंतरिक गुरु दोनों ही भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब तक ऐसे प्रामाणिक प्रतिनिधित्व से किसी का संपर्क नहीं हो जाता, तब तक वह अपने को गुरु नहीं कह सकता। ब्रह्मा जी को बाह्य गुरु से सहायता लेने का अवसर ही नहीं था, क्योंकि उस समय ब्रह्मांड में वे ही एकमात्र प्राणी थे। अतएव बाह्य की ब्रह्मा की स्तुतियों से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें प्रत्येक वस्तु के विषय में भीतर से प्रबुद्ध कर दिया। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी को ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ, क्योंकि हृदय में भगवान ने दर्शन दिया। और तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, उन आदि कवि ब्रह्मा जी को कोई ज्ञान नहीं था, वो पैदा हुए थे, उनको पता नहीं था कि मैं कहाँ से आया हूँ। लेकिन हृदय की एकाग्रता के बाद जब उन्होंने भगवान का ध्यान किया, तपस्या की, भगवान से याचना की कि मुझे बताइए कि मेरा, मैं कौन हूँ, मेरा आने का उद्देश्य क्या है, तो भगवान ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट हो गए और उन्हें प्रकाश प्राप्त हुआ। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर एक खास बात ये बता रहे हैं कि बाह्य गुरु तथा आंतरिक गुरु दोनों ही भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे अंदर इतनी ब्रह्मा जी की जितनी साधना नहीं है, ना ही इतना एकाग्रचित्त है, और ना ही हमारे अंदर इतनी क्षमता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, जब तक ऐसे प्रमाणिक प्रतिनिधित्व से किसी का संपर्क नहीं हो जाता, एक ऐसा प्रमाणिक प्रतिनिधित्व जो कि भगवान के साथ डायरेक्ट संपर्क कर सकता हो, है ना, जिसे हमारी क्षमता नहीं है, लेकिन ऐसा गुरु, प्रमाणिक प्रतिनिधि जो कि भगवान के साथ संपर्क करता कर सकता है, उनके साथ जब तक हमारा संपर्क नहीं हो जाता, तो तब तक हम अपने को ज्ञान देने के लिए योग्य नहीं बना सकते। गुरु नहीं कह सकता, मतलब कि हम तब तक अच्छे शिष्य नहीं बन जाते, तब तक अच्छे गुरु नहीं बन सकते। तो ब्रह्मा जी को बाह्य गुरु से सहायता मिलने का अवसर नहीं हुआ, तो क्योंकि उस समय तो कोई और था ही नहीं, एकमात्र प्राणी कौन थे, ब्रह्मा जी थे। तो उन्होंने तो डायरेक्ट से भगवान की स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें प्रत्येक वस्तु के विषय में भीतर से ही प्रबुद्ध कर दिया। मगर हमारी वो स्थिति नहीं है, हमें तो एक शुद्ध वैष्णव गुरु की शरण लेना ही है। और जब तक हम एक शुद्ध वैष्णव गुरु की शरण में नहीं जाते हैं, जब तक एक प्रमाणिक गुरु हमें नहीं स्वीकार कर लेते हैं, तब तक हमें भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान कहते हैं, प्रथमस्तु गुरु पूज्यम तदर्थम मम अर्चनम, पहले तो गुरु करना पड़ेगा, उसके बाद आओ मेरी अर्चना करने के लिए। तुम्हारी कोई भी सेवा तब तक मैं स्वीकार नहीं करूंगा जब तक एक प्रामाणिक वैष्णव के माध्यम से नहीं आओगे। तो हमको बहुत ही सावधानी से अपने इस मनुष्य जीवन को गुजारना है। ये कोई मजाक नहीं है, ये बड़ी मुश्किल से मिलता है। देवता तरसते हैं, क्योंकि उनको भी अवसर नहीं मिलता है कि वो एक शुद्ध प्रामाणिक गुरु से दीक्षा लेकर भगवान को प्राप्त कर ले। उन देवताओं को भी यदि भगवत प्राप्ति करनी है, तो स्वर्ग से कोई रास्ता भगवान के धाम तक नहीं जाता। उन्हें भी संसार में आकर मनुष्य बनकर गुरु करके भगवान को प्रसन्न करके उनकी भक्ति करके भगवत धाम जाना होगा। तो हम तो कितने सौभाग्यशाली हैं, ना जाने कितनी दफा हम देवता भी बने होंगे, लेकिन कोई शांति का मार्ग नहीं है भगवत प्राप्ति के अलावा, कहीं भी आनंद नहीं है। लग्जरियस लाइफ आनंद का एक ढोंग हो सकती है, वस्तुएं प्रदान कर सकती है, आनंद केवल भगवान के चरणों में है, भगवान की भक्ति में है। और हमें बहुत सुंदर अवसर मिला है, और कल का कुछ पता नहीं है। हमको अच्छा कार्य जो है ना, वो जितना जल्दी संभव है उतना जल्दी कर लेना चाहिए, और इस संसार में एक शुद्ध वैष्णव गुरु की शरण ग्रहण करने से ज़्यादा अच्छा कार्य और कोई भी नहीं है। क्योंकि कार्य अच्छा क्या है और क्या नहीं है, उसका कैसे खबर पड़ेगी कि उसका परिणाम क्या निकलता है। और एक शुद्ध प्रामाणिक वैष्णव गुरु करने का परिणाम क्या निकलता है पता है, कि वो हमें भगवत प्राप्ति करा देते हैं। अरे जब भगवान प्राप्त हो जाते हैं, फिर क्या और कोई कमी रह जाएगी जीवन में। इसलिए आप सब बहुत बुद्धिमान हो कि आप सब रोज़ भागवतम पढ़ते हो, भागवतम श्रवण करते हो, तो आप सबसे एक ही विनती है कि श्रील प्रभुपाद जी जो कह रहे हैं, एक एक शब्द जो है वो हमारे लिए एक एक आदेश है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जब तक ऐसे प्रमाणिक प्रतिनिधित्व का किसी को संपर्क नहीं हो जाता है, तब तक वो भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। इसलिए हमको बहुत सीरियस हो जाना चाहिए कि हमें जल्द से जल्द भगवान को प्राप्त करने के लिए एक वैष्णव गुरु की शरण में ज़रूर जाना चाहिए। और वो वैष्णव गुरु आज इस कलयुग में श्रील प्रभुपाद जी के प्रतिनिधित्व के और कहीं पर नहीं मिलेंगे, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी की स्कॉन संस्था जो है वो हमें एक शुद्ध वैष्णव गुरु प्रदान करती है। इसलिए कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम भटकते रहेंगे ना तो हम कभी भी एक लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए एक पवित्र और शुद्ध वैष्णव की शेल्टर में आकर हमको अपनी भक्ति का सफ़र बढ़ाना चाहिए, ताकि हम जल्दी से जल्दी अपने सफ़र की मंजिल तक पहुंच जाएं। आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, अथाभि प्रेतमन्वीक्ष्य ब्राह्मणो मधुसूदन वेषण चेतसं तेन कल्पव्यतिकराम्बसा लोकसंस्थानवीक्ष्यानाम् आत्मना परिखेद्यत तमाह गाधया वाचा कश्मलं शमयन्निव अथाभि प्रेतमन्वीक्ष्य ब्रह्मणो मधुसूदन विषण चेतसं तेन कल्पव्यतिकराम्भसा लोकसंस्थानवीक्ष्यान आत्मन परिखेद्यत तमाह गाधया वाचा कश्मलं शमयन्निव अथाभि प्रीतमन्वीक्ष्य। अथ मनो उसके उपरांत, जब ब्रह्मा जी मौन हो गए उसके उपरांत, अभिप्रेतम यानी मनसा या मनोभाव, उनका जो मन का भाव था, अन्वीक्ष्य देखकर ब्राह्मण यानी ब्रह्मा का, मधुसूदन अर्थात मधु नामक असुर को कावत करने वाले भगवान विष्णु यानी खिन्न, और चेतसम यानी चेत हृदय, तेन उसके द्वारा कल्प युग, व्यतिकर अम्बसा यानी प्रलयकारी जल। तो भगवान ने जब देखा कि प्रलयकारी जल को देखकर भगवान जो कि मधुसूदन यानी मधुर नामक राक्षस को मारने वाले हैं ना, वो हमारे समस्त भय को भी समाप्त करने वाले हैं। भय रूपी जो, चिंता रूपी जो हमारे हृदय के अंदर राक्षस है ना, वो भी जब हम भगवान का स्मरण करते ना, तो पहला काम क्या होता है जानते हो? भक्ति करने के बाद जब आप भक्ति करते हो ना, तो सबसे प्रथम बात ये होती है कि आपके हृदय का भय समाप्त हो जाता है। ये अगर आपके हृदय में किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति का या किसी भी स्थिति का भय है ना, तो इसका मतलब है आप भक्ति नहीं कर रहे हो। वो आप एक मतलब वो जैसा होता है ना, मैकेनिकली आप जप कर रहे हो, लेकिन वो उतना हृदय के अंदर विश्वास नहीं है अभी तक। क्योंकि जहां पर विश्वास होता है ना, वहां पर भय नहीं होता, और जहां पर भय होता है ना, डेफिनेटली विश्वास नहीं होता। तो भगवान तो बड़े बड़े राक्षसों का भी मार देते हैं, तो हृदय के अंदर ये जो छोटे छोटे राक्षस आके बैठ जाते हैं, जैसे ही हम प्रेम से बोलते हैं ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस यदि भेति स्वयं भया, इस पवित्र नाम का उच्चारण करने से साक्षात भय भी भयभीत हो जाता है। तो भगवान ने जब देखा कि ब्रह्मा जी प्रलयकारी जल को देखकर खिन्न हैं, तो ब्रह्मा जी के इस दुख को दूर करने के लिए मन भगवान जो उनके मनोभाव को समझ गए, और फिर उन्होंने ब्रह्मा के इस मोह रूपी राक्षस को खत्म करने के लिए लोक संस्थान विख्यान आत्मान परिखीत्यत। लोक संस्थान यानी लोक की स्थिति, विज्ञाने यानी विज्ञान में, आत्मना स्वयं परिखिद्यत अत्यधिक चिंतित देखकर तमाह गाधया वाचा। तमाह तमन उससे, आह मतलब कहा, आगाधया अर्थात अत्यंत विचारपूर्ण, वाचा मना शब्दों में, भगवान ने बहुत ही विचार विमर्श करने के बाद बहुत ही सुंदर और मधुर शब्दों में कशमलम यानी अशुद्धियां शमयम हटाते हुए इव यानी सारी अशुद्धियां, मोह चिंता और खिन्नता को हटाते हुए भगवान ने इन सुंदर शब्दों से ब्रह्मा जी को संबोधित किया। अनुवाद देखिए, भगवान ने देखा कि ब्रह्मा जी विभिन्न लोकों की योजना बनाने तथा उनके निर्माण को लेकर अतीव चिंतित हैं और प्रलयंकारी जल को देखकर खिन्न हैं। वे ब्रह्मा के मनोभाव को समझ गए, अतः उन्होंने उत्पन्न मोह को दूर करते हुए गंभीर एवं विचारपूर्ण शब्द कहे। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रलयकारी जल इतना भयावना था कि इसे देखकर ब्रह्मा तक विचलित हो गए थे और अत्यंत चिंतित थे कि विभिन्न जीवों को यथा मनुष्यों, मनुष्येतर तथा अति मानवीय प्राणियों को स्थान देने के लिए बाह्य आकाश में विभिन्न लोकों को किस तरह स्थापित किया जाए। ब्रह्मांड के सारे लोग प्रकृति के गुणों के प्रभाव के अधीन विभिन्न कोटि के जीवों के अनुसार स्थित हैं। प्रकृति के गुण तीन हैं और परस्पर मिलाने पर ये नौ हो जाते हैं, और जब इन नौ को मिलाया जाता है तो वे 81 बन जाते हैं। इसके बाद ये 81 भी परस्पर मिलकर इतनी बड़ी संख्या में हो जाते हैं कि ब्रह्म बढ़ता जाता है। ब्रह्मा जी को निश्चित संख्या में बद्ध जीवों को विभिन्न स्थानों तथा पदों पर स्थापित करना था। यह कार्य ब्रह्मा को ही करना था और ब्रह्मांड में अन्य कोई ऐसा नहीं जो यह समझ भी पाता कि यह कार्य कितना कठिन था, किंतु भगवान की दया से ब्रह्मा इस गुरुतर कार्य को इतनी दक्षता से संपन्न कर सके कि हर व्यक्ति विधाता की करामत देखकर चकित है। श्रील प्रभुपाद की जय। बहुत ही सुंदर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जब प्रलय हो गई थी और प्रलयकारी जो जल था उसके कारण, क्योंकि पूरा संसार जो है वो प्रलयकारी जल की वजह से नाश हो गया था, और इतना जल, इतना खाली जल ही जल था, तो ब्रह्मा जी उत्पन्न हो गए और ब्रह्मा जी को भगवान ने क्या बोला, आपको संसार की सृष्टि करनी है। आप अगर एक छोटे से घर को भी देखो, हम देखते हैं कभी कोई पूरा घर गिर जाए और एक व्यक्ति को बोला जाए भाई आप इसको ठीक करो वापस से, तो परेशान हो जाएगा कि अब कुछ भी चीज जगह पे नहीं है। घर को, एक अगर सिटी को निर्माण करना हो, पूरा एक सिटी हो, एक शहर पूरा तबाह हो जाए, उसको वापस से नए से निर्माण करना हो, तो कितना एक व्यक्ति चिंतित हो जाएगा। अत्यंत चिंतित थे ब्रह्मा जी कि कैसे सारे मनुष्यों को, उनके दूसरी जितनी भी योनियां, 84 लाख योनियों को पुनः निर्माण करना था, है ना, अलग अलग प्राणियों को स्थान देने के लिए, उनको, उनके लिए लोक बनाने थे। अब लोक ही नहीं थे कोई, पूरा सब कुछ ये जो 14 लोक ब्रह्मांड के अंदर है वो उनको दिख ही नहीं रहे थे कहीं पर, तो उन सब का निर्माण करना था और किस तरह से उनको निर्माण करके अपने अपने क्षेत्र में स्थापित करना था। और सारे लोग प्रकृति के गुणों से प्रभावित होते। अब प्रकृति के गुणों के विषय में भी, प्रकृति के गुण हमें तो 3 दिखते हैं, रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बताते हैं कि इनको आपस में जब परस्पर मिलाते हैं, परस्पर कैसे, सत्वगुण रजोगुण को मिलाया, सत्वगुण तमोगुण को मिलाया, रजोगुण और सत्वगुण को मिलाया, ऐसे करके करके जब एक दूसरे के साथ मिलाते तो पहले 9 बन जाते हैं, और 9 जब डबल डबल हो गए वो भी आपस में मिलाते हैं तो वो भी 81 बन जाते हैं, और 81 से भी बढ़कर और उनकी इतनी संख्या हो जाती है कि भ्रम बढ़ता ही जाता है, पता ही नहीं चलता ये गुण किस तरह से अटैक कर रहे हैं। और ब्रह्मा जी को निश्चित संख्या में बद्ध जीवों को विभिन्न स्थानों तथा पदों पर स्थापित करना था। एक क्वांटिटी दी थी भाई, इतने जीवों को यहाँ यहाँ पर स्थापित करना है, इतने, तो निश्चित संख्या दी थी। ये कार्य ब्रह्मा के लिए करना उनको था, और उस समय और कोई था भी नहीं जो कि इस कार्य को करे, तो और किसी को पता भी नहीं था कि कितना कठिन कार्य एक ब्रह्मा जी को दिया। लेकिन आपको पता है जब भगवान की कृपा होती है ना, कोई क्षुद्र से क्षुद्र जीव भी सब कुछ कर सकता है। मैरिकल्स क्यों होते जानते हो? भगवान की कृपा से होते हैं, वरना कौन सोच सकता था कि एक बूढ़े व्यक्ति, 70 साल के बूढ़े व्यक्ति अमेरिका जैसे शहर में जाएंगे और वहां पर सारे लोग जो हैं वो नशा करते हैं, वो गलत कार्य करते हैं, वो मांसाहार करते हैं, वो उनकी बात सुनेंगे और वैष्णव बन जाएंगे, है ना? कोई सोच सकता है क्या कि एक हम हमारे घर में हमारे पिता हमको सारा दिन बोलते रहते, आज हम देखें एक अपने बच्चे को सुधारने की भी हमारे अंदर शक्ति नहीं होती। हमारा बच्चा गलत कार्य करता है, हम समझ ही नहीं पाते कि हम क्या करें, विवश हो जाते हैं। और वो क्या डिटर्मिनेशन लेकर गए थे कि मैं वहां पर कृष्ण भक्ति को फैलाऊंगा, क्योंकि मेरे गुरु महाराज ने आदेश दिया और कृष्ण की कृपा से मैं ये करूंगा। उनको अपने कृष्ण के ऊपर, अपने गुरु के ऊपर, अपने नाम के ऊपर कितना भरोसा था, ये विश्वास हमको आगे लेके जाता है। अगर हम श्री प्रभुपाद जी के आदेशों को गली गली, जगह जगह, शहर शहर में अगर फैलाने का प्रयास करेंगे ना, तो पूरी शक्ति हमारी नहीं, हमारा सिर्फ योगदान ऐसा होगा कि हमको बस इन शब्दों को लेके जाना है, अपनी श्रद्धा को लेके जाना है। और करने वाला कौन है? वही गुरु और कृष्ण स्वयं करेंगे। हमको बस सिंसियरली ये सोचना है कि चैतन्य महाप्रभु ने जो आदेश दिया है, पृथ्वी ते आचयत नगराधिक्राम सर्वत्र प्रचार हुई पे मोरा नाम। पृथ्वी के अंदर जितने भी नगर और गांव हैं वहां पर कृष्ण नाम का प्रचार होना चाहिए, और ये तभी संभव है जब हम मिल के करें और जब हम हृदय से भगवान के प्रचार के लिए, किसी व्यक्ति के लिए नहीं, भगवान के लिए जब हम आगे बढ़ेंगे ना, तो फिर क्या होगा, भगवान की दया होगी। भगवान देखेंगे कितना सिंसियरली करना चाहता है, तो भगवान की दया से ब्रह्मा इस गुरुतर कार्य को इतनी दक्षता से संपन्न कर सके कि हर व्यक्ति विधाता की करामात देख कर चकित हो गए, है ना? आज तक हम चकित हो जाते हैं, हर एक वस्तु कितनी सुंदरता से बनाई है, हर एक लोक में ब्रह्मा जी ने कितना दक्षता से कार्य किया है, तो ये सब भगवान की करुणा से होता है। जब हम सिंसियर होकर भगवान को सरेंडर करते हैं ना कि कृष्ण आपको प्रसन्न करने के लिए करना है, तो भगवान बहुत सहायता करते हैं, प्रकृति अनुकूल हो जाती है। भगवान सबको, भगवान कहते हैं अर्जुन को, मैया वेते निहत्ता पूर्वमेव निमित्त मात्र भव सव्यसाची। जो कुछ हो रहा है ना, आप जो करते हो ना, वो भगवान ने पहले ही कर दिया है, मैया वेते निहत्ता पूर्वमेव। अर्जुन बोलता है मैं अपने गुरु को कैसे मारूं, मैं पितामह भीष्म को कैसे मारूं, मैं ये सब तो मेरे भाई हैं, इनको मार कर तो क्या, इनके साथ तो कभी मैं वाक युद्ध भी नहीं कर सकता, तो मारने की बात करते हो। तब कृष्ण बोलते तुम्हें नहीं मारना अर्जुन, मैया वेते निहत्ता पूर्वमेव, जो अधर्म करेगा उसको तो मैंने पहले ही मार दिया, तुम्हें तो खाली क्या करना है, निमित्त मात्रम भव सव्यसा, बस निमित्त बनना है कि अधर्म जोर ना पकड़ ले, और तुम्हें धर्म का साथ देना है, और बस ये डिसाइड करना हमको है कि धर्म किस तरफ है, और धर्म का साथ यदि हम देंगे तो भगवान कहते जहाँ धर्म होता है वहीं मैं होता हूँ, और जहाँ मैं होता हूँ वहीं विजयी होती है। और आगे अब भगवान ब्रह्मा जी को सांत्वना देने के लिए बहुत ही मधुर शब्द बोलने वाले हैं। श्री भगवान उवाच, मा वेद गर्भगा स्तंद्री सर्ग उद्यम मावह तन्मया पादितं ह्यग्रे यन्मं पार्थयति भवान्। मा वेद गर्भगा तन्द्री सर्ग उद्य ममावह तन्मया पादितं ह्यग्रे यन्मं पार्थयति भवान्। श्री भगवानु वाच, अर्थात भगवान जो संपूर्ण यश, संपूर्ण सुंदरता, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण धन और संपूर्ण वैराग्य से युक्त हैं, वो ब्रह्मा जी से कहते हैं मा वेद गर्भ गास्तंद्रीम, मा मतलब नहीं या मत, वेद गर्भ अर्थात वैदिक ज्ञान की गहराई तक पहुंचने वाले ब्रह्मा जी को भगवान कहते हैं आपको सारे वेदों का ज्ञान है। गास्तंद्रीम अर्थात निराश मत हो, आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, आप चिंता मत करो, आप मेरा कार्य करने के लिए जाए हो। सर्ग उद्यममा वह, सर्गे अर्थात सृजन के लिए, उद्यम अर्थात अध्यवास वसायन, आवह अर्थात जरा हाथ तो लगाओ, बस खाली तुमको स्पर्श करना है, तुम चिंता मत करो क्योंकि ये सारा कार्य तो मैं कर चुका हूँ। तन मया पादितम यग्रे, तन अर्थात वह जो तुम चाहते हो, मया मनी मेरे द्वारा, आपादितम अर्थात संपन्न हुआ है, जो तुम चाहते हो तो कब का हो चुका है मेरे द्वारा, ही अर्थात निश्चय ही, अग्रे अग्रे मतलब पहले ही, यत माम पार्थयते भवान, यत माना जो, माम यानी मुझसे, पार्थयते अर्थात मांग रहे हो भवान, तुम मुझसे आशीर्वाद मांग रहे हो कि मुझे शक्ति दो कि मैं ये सृजन का कार्य करूं, तुम मुझसे आशीर्वाद मांग रहे हो कि मैं तुमको योग्यता प्रदान करूं, मैं ये सब मैं पहले ही कर, जो जो तुम मुझसे मांग रहे हो ना कि मुझे कभी अहंकार नहीं आए, मुझ पर कृपा करो कि मैं कर सकूं, ये सब तो मेरे द्वारा बहुत पहले हो चुका है, तुमको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, तुम तो खाली हाथ लगाओ बस हो गया समझो। अनुवाद देखिए, तब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा हे ब्रह्मा, हे वेदगर, तुम सृष्टि करने के लिए ना तो निराश हो और ना ही चिंतित, तुम जो मुझसे मांग रहे हो वह तुम्हें पहले ही दिया जा चुका है। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते भगवान या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि द्वारा अधिकार प्रदत्त कोई पुरुष पहले ही आशीर्वाद पा चुकता है, और उसी तरह उसे सौंपा हुआ कार्य भी। निसंदेह उस व्यक्ति को जिसे ऐसा उत्तरदायित्व सौंपा गया है सदैव अपनी क्षमता से अवगत होना चाहिए और अपने कर्तव्य के सफलतापूर्ण संपादन के लिए भगवान की कृपा के लिए अपेक्षा करनी चाहिए। अब यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, भगवान अगर किसी को प्रतिनिधि बनाते हैं अपने अपने इस कार्य को करने के लिए, उसे यदि चुनते हैं तो कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं हो सकता। भगवान ने डेफिनेटली उनको पहले से ही आशीर्वाद देकर भेजा है। अगर आपसे भगवान कुछ करवाना चाहते हैं, आपसे भगवान यदि कोई आपको किसी कार्य के लिए चुना है, तो इसका मतलब क्या है कि भगवान ने अवश्य पहले बहुत सारा आशीर्वाद दिया है, कृपा दी है, तभी तो भगवान अब ब्रह्मा जी को भगवान सृजन करने के लिए बोल रहे हैं। वो सृजन करने का कार्य करेंगे तो उसके लिए जो क्षमता की आवश्यकता होगी। लेकिन फिर भी श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान उनको आशीर्वाद तो देते हैं, लेकिन जिन 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 भक्तों को कोई मेन कार्य सौंपा जाता है, तो निस्संदेह उस व्यक्ति को जिसे ऐसा उत्तरदायित्व सौंपा गया हो सदैव अपनी अक्षमता से अवगत होना चाहिए। उसे ये पता होना चाहिए कि मैं कुछ नहीं कर सकता, अकेला मैं व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी हो सकता है कल दूसरे पल में, तो करने वाले भगवान है। अपनी अक्षमता से अवगत होना चाहिए और अपने कर्तव्य के सफलतापूर्ण संपादन के लिए भगवान की कृपा के लिए अपेक्षा करनी चाहिए कि करने वाला वही भगवान है, वही चाहेगा वही होगा, बस मुझे तो भगवान ने चुना है। तो वेन यू थिंक यू कैन डू, यू कैन डू, लेकिन वो सिर्फ आपकी क्षमता के बराबर के कारण नहीं होगा। अगर आप बोलोगे हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, तो ये अहंकार होगा। लेकिन यदि आप ये बोलोगे कि मुझे भगवान ने चुना है और भगवान अगर मुझे कृपा करेंगे, भगवान अगर मुझे शक्ति देंगे, तो कुछ भी किया जा सकता है। गुरु और कृष्ण की कृपा से सब कुछ संभव है। तो हमें हमेशा अपनी अक्षमता को याद रखना चाहिए कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरा कोई मेरी तो कोई योग्यता ही नहीं है, ये तो भगवान की कृपा पे हमेशा अपेक्षा होनी चाहिए। उसे इसलिए गर्वित नहीं होना चाहिए कि उसे कोई प्रशासनिक कार्य सौंपा गया है। आज हम देखते हैं किसी को कोई कार्य करने के लिए बोला जाता है कि भाई आप भगवान की ये सेवा करो, तो उसको इतना गर्व हो जाता है कि भाई मैं देखो इतना महान हूँ तब ये कार्य करता हूँ। कोई महान नहीं हो, तुम्हें भगवान ने चुना है, एज अ सेवक चुना है, तो हमको एज अ सर्वेंट ही कार्य करना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि उससे ये सोचकर गर्वित नहीं होना चाहिए कि कोई प्रशासनिक कार्य उसको सौंपा गया है। वह भाग्यशाली है जिसे ऐसा कार्य सौंपा गया है, और यदि वह इस भाव में सदैव स्थिर रहता है कि मैं परमेश्वर की इच्छा के अधीन हूँ, तो अपने कार्य के संपादन में उसका सफल होना सुनिश्चित है। हर वक्त यही सोचना चाहिए कि भगवान की कृपा पर निर्भर हूँ, मैं भगवान का एक छोटा सा दास हूँ। जिस समय मान पूजा प्रतिष्ठा लाभ इसके विषय में सोचना शुरू कर दिया ना, तब तो वो दासत्व का काम ही नहीं हुआ ना, वो तो फिर यही हुआ कि मेरा नाम बढ़ना चाहिए। नाम तो भगवान का बढ़ना चाहिए, भगवान के लिए कार्य। ब्रह्मा जी कभी भी अपने नाम के लिए कार्य, सृष्टि कार्य नहीं करते, वो तो भगवान की खुशी के लिए करते हैं। और हम भी यदि यही सीखना है बस, कोई भी कार्य, कोई भी सेवा, कोई भी योग्यता है, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान को, भगवान के लिए करनी है, भगवान के नाम को बढ़ाने के लिए करनी है, भगवान की प्रसन्नता के लिए करनी है। तो अगर ऐसा करते हैं तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, यदि वह इस भाव से में सदैव स्थिर रहता है कि परमेश्वर की इच्छा के अधीन हो, तो अपने कार्य के संपादन में उसका सफल होना निश्चित है। फिर तो भगवान खुद ही सहायता करेंगे। अर्जुन को कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में युद्ध करने के कार्य सौंपा गया था और उसे यह कार्य सौंपने के पूर्व ही भगवान उसकी विजय की व्यवस्था कर चुके थे, किंतु अर्जुन भगवान की अधीनता के प्रति सदैव सचेत रहा और इस उत्तरदायित्व में उसने उन्हें अपना परम मार्गदर्शक स्वीकार किया। भगवान को अर्जुन ने मार्गदर्शक स्वीकार किया, हालांकि उसको पता भी था भगवान मेरे साथ है तो डेफिनेटली मेरी विजय होगी, लेकिन इस बात से अहंकार नहीं था उसको। वो हमेशा भगवान से के मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहता था कि बताओ अब मुझे क्या करना चाहिए। तो जो भी व्यक्ति किसी उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य को संपन्न करने के लिए गर्वित रहता है किंतु उसका श्रेय भगवान को नहीं देता, वह निश्चित ही मिथ्याभिमानी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, हमको हमेशा इस बात को याद रखना चाहिए। श्रीला प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आपको भगवान ने चुना है अपनी सेवा के लिए, और जो भी व्यक्ति किसी उत्तरदायित्व पूर्ण काम को संपन्न करने के लिए गर्वित होता है कि मैंने किया, इतने लोगों को मैंने भक्त बनाया, इतना जगह पर मैंने प्रचार किया, मैंने किया, जब वो मैं आ जाता है ना, भगवान की कृपा हट जाती है, फिर सिर्फ गर्व रह जाता है। तो हमेशा जो भी कार्य हम करते हैं, जो भी सेवा हो, कभी भगवान के ड्रेस बनाने की सेवा हो, कभी भगवान के लिए कोई प्रोग्राम आयोजन करने की सेवा हो, कोई मैनेजमेंट हो, कोई सेवा, हमको भगवान ने चुना है तो हमेशा अपने आप को भाग्यशाली समझकर भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। हमेशा जितना हम नम्र रहेंगे ना, विनम्रता से हमको सेवा मिलेगी, हमको हमेशा, लेकिन विनम्रता के साथ सेवा करते करते हमको ये नहीं भूलना है कि हम कुछ भी नहीं है, वो तो भगवान की शक्ति से हम बोल रहे हैं, भगवान की शक्ति से हम सेवा कर रहे हैं। हम अगर भगवान की कृपा नहीं रही तो हम कुछ भी नहीं है, तो कभी भी गर्वित नहीं होना चाहिए। यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे कि परमेश्वर की इच्छा के अधीन हो तो अपने कार्य में सफल होना निश्चित है। यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं किंतु अर्जुन भगवान की अधीनता के प्रति सदैव सचेत रहा, उत्तरदायित्व में उसने अपना परम मार्गदर्शन भगवान को स्वीकार किया। जो भी व्यक्ति किसी उत्तरदायित्व पूर्ण कार्य को संपन्न करने के लिए गर्वित होता है, ये अहंकार आपके भगवत प्रेम को खा जाता है। जब आपको मान सम्मान की इच्छा होती है ना, तो अंदर से भक्ति समाप्त हो जाती है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अमानी, ये केवल केवल बोलने की बातें थोड़ी हैं, ये हमको प्रैक्टिकली सदैव याद रखनी है कि कभी गर्वित नहीं होना है, किंतु उसका श्रेय भगवान को ही देना है। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं जो व्यक्ति किसी उत्तरदायित्व पूर्ण कार्य को संपन्न करने के लिए गर्वित होता है किंतु उसका श्रेय भगवान को नहीं देता, वह निश्चित ही मिथ्याभिमानी है और वह कोई भी कार्य ढंग से संपन्न नहीं कर सकता। ब्रह्मा तथा उनके पद चिन्हों का अनुसरण करने वाली शिष्य परंपरा के व्यक्ति सदैव भगवान की दिव्य प्रेम मां भक्ति संपादित करने में सफल होते हैं। ये अगर हम ब्रह्मा के पद चिन्हों पर चलते हुए, क्या ब्रह्मा जी ने किया? संपूर्ण शक्ति होने के बावजूद भी भगवान को समर्पित किया कि भगवान आप आशीर्वाद दीजिए, मैं आपको प्रसन्न करने के लिए कार्य करता हूँ, कृपया मुझे कभी गर्वित मत होने देना, मुझमें कभी अहंकार मत आने देना कि मैं आपकी सेवा अच्छे से कर सकूं आपको प्रसन्न करने के लिए। तो भगवान ने तो कह दिया हे ब्रह्मा जी, आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं, आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, जो तुम्हें चाहिए वो मैंने पहले ही तुमको दे दिया। अर्जुन को भी बोला जिनको तुम्हें मारना उनको मैंने पहले से मार दिया। जब भगवान आपको किसी कार्य के लिए चुनते हैं ना, वो कार्य आप नहीं करते हो, वो कार्य भगवान करते हैं। आपको तो केवल भगवान उस कार्य को करने के लिए श्रेय प्रदान करते हैं। तो हमें केवल सिंसियर होना है कि हाँ मैं करूँगा कृष्णा, तुम्हारा काम करूँगा, मैं करूँगा। तो जब आपने काम ले लिया ना हाथ में,
और भगवान को प्रसन्न करने के लिए, अपने नाम के लिए नहीं, अपने फेम के लिए नहीं, अगर भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर दिया तो वो काम ऐसे हो जाएगा कि संसार हैरान हो जाएगा। जैसे श्रीला प्रभुपाद जी ने भगवान की प्रसन्नता के लिए पाश्चात्य देश में जाकर भगवत प्रचार किया, कौन सोच सकता था कि आज संसार के हर कंट्री में इस्कॉन का टेम्पल है, भगवान के भक्त हैं, हरे कृष्ण महामंत्र है, इतने शुद्ध वैष्णव रोज भर रहे हैं, भगवान की भक्ति के लिए आगे आ रहे हैं, कौन सोच सकता था कैसे होगा। लेकिन जब एक शुद्ध भक्त भगवान को प्रसन्न करने के लिए आगे बढ़ता है तो मिरेकल्स होते हैं, तो चमत्कार होते हैं, जिसे देखकर सारा संसार हैरान हो जाता है। तो हमें भी अपने इस जीवन को भगवान की सेवा के लिए समर्पित करना है, जैसा भगवान चाहते हैं उस तरह से, ना कि जैसा हम चाहते हैं उस तरह से। और अगर हम भगवान को समर्पित होकर भगवान की सेवा करेंगे तो हमको करना कुछ नहीं पड़ेगा, वो सब भगवान ही करेंगे। हरे कृष्ण। आप सबका बहुत बहुत आभार, कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्णा।